জয় গোপী গণ বল্লভ গিরিবর ধারি যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যমুনা তীরাবন সারি যমুনা তীরাবন সারি রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি জয় গোপী গণ বল্লভ গিরিবর ধারি যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যমুনা তীরাবন সারি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে জয় রাধা গিরিধারি রাধা গিরিধারি রাধে জয় জগন্নাথ জগন্নাথ বলদেব জয় সুভদ্রা জয় গৌরনিতাই 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 জয় গৌরনিতাই জয় গৌরনিতাই 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 জয় গৌরনিতাই প্রভুপাদ 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 নিতাই গোর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল राम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद महाराज की ज्ञानति मिरंधस्य ज्ञानंदन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांसाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचारी गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो हरे कृष्णा सभी भक्त और माता जी को आज एकादशी होने के कारण श्रीमद् भागवत के स्थान पर श्री प्रभुपाद लीलामृत से पाठ होगा और यहीं से शुरू आज हम अध्याय 22 और इसका शीर्षक है स्वामी हिप्पियों को आमंत्रित करते हैं जनवरी 16, 1966 जब यूनाइटेड एयरलाइंस का जेट विमान सैन फ्रांसिस्को के क्षेत्र में नीचे उतर रहा था श्री प्रभुपाद अपने शिष्य रणछोड़ की ओर मुड़े और बोले इमारतें जिला हिस्से की डिबियों जैसी दिख रही है जरा सोचो विष्ण के दृष्टिकोण से ये सब कैसा दिखेगा श्री प्रभुपाद इकहत्तर वर्ष के थे और यह उनकी पहली हवाई यात्रा थी रणछोड़ जो 19 वर्ष का था और सूट टाई पहना था श्री प्रभुपाद का सचिव माना जाता था। यह नया शिष्य था, लेकिन उनसे कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए थे और प्रभुपाद के साथ सैन फ्रांसिस को जाने की प्रार्थना की थी। यात्रा के दौरान श्री प्रभुपाद बहुत कम बोले थे। वे जप करते थे और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा की, जय भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। उनका दाहिना हाथ माला के कपड़े की थैली में था और जब वे मौन थे और लीन थे तब वे उंगलियों को माला के एक के बाद एक दूसरे मनके पर फिरा रहे थे। जब विमान न्यूयॉर्क शहर के ऊपर पहली बार उठ रहा था तो उन्होंने खिड़की से निरंतर छोटी दिखती जा रही थी इमारतों को देखा था। तब बादलों के बीच चला गया था जो प्रभुपाद को आकाश में समुद्र जैसे लगते थे। दबाव के कारण कानों के बंद हो जाने से उन्हें कुछ परेशानी हुई थी और उन्होंने उसकी चर्चा की थी कि अन्यथा अधिकतर वे मौन थे, लेकिन वे बार बार कृष्ण नाम का जप करते थे। अब जब कि विमान नीचे उतर रहा था तो वो जप करने में लगे रहे थे। कुछ स्फुट आवाज में कृष्ण 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 और खिड़की की राह उन्हें दिखलाई कि दिलासली की दिव्यों की जैसी हजारों इमारतें और चारों दिशाओं में योजनाबद्ध रूप के फैली सड़कें के जाल के दृश्य पर दृष्टिपात किया। जब यूनाइटेड एयरलाइंस जेट विमान की नॉर्क उड़ान नंबर 21 की घोषणा लाउडस्पीकर पर सुनाई पड़ी तो लगभग 50 जीपियों का दल पहले से ही और निकट सिमट आया था। एक क्षण के लिए वे भयभीत से हुए और उस निश्चय से हुए आंगोचित स्वामी के क्या अपेक्षा की जाए, वे कैसे होंगे। रोजर सेगल सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे के लिए हमारे दल के लोग विविध प्रकार के लगते थे। मुकुंद मार्लिन बाजीगर जैसे पहनावा पहने था और जिस पर सर्वत्र वर्गाकीर खाने बने थे और साम मार्क की भेड़ की खाल और उसी की टोपी धारण की था। उससे भेड़ जैसी गंध आ रही थी और मैं एक जापानी युद्ध की घेर में बनी हुई नीली पोशाक में था और जिस पर छोटी छोटी सफेद बिंदिया थी। मनको की लंबी लड़ी वाली मालाएं सर्वत्र दिखाई देती थी। कहीं मृगशाला के लपटे लोग थे और कहीं बूटों के समसर थे और कहीं सेना के दंडित जवान थे तो कहीं छोटे गोल धूप के चश्मे पहने लोग सैन फ्रांसिस्को का पूरा माया जाल अपना सीमा पर पहुंचा दिखाई देता था। एकत्रित समूह में स्वामी जी को जानने वाले बहुत थोड़े लोग थे। मुकुंद और उनकी पत्नी जानकी, रविंद्र स्वरूप राय राम सभी न्यूयॉर्क के लोग और एलन विंबर्स भी वहाँ था। कुछ दिन पहले गोल्डन गेट पार्क में जो समारोह हुआ था उसके नेताओं में से एक एलन भी था। उसी समारोह में 2000 से भी अधिक लोग इकट्ठे हुए थे। आदिवासियों का एक संपर्क विनिमय और शांत नृत्य के लिए आज स्वामी स्वामी भक्तिवेदांत का स्वागत करने के लिए एलन मौजूद था, जिनसे वह कई महीने पहले न्यूयॉर्क में लोअर ईस्ट साइड में मिल चुका था और जिनके साथ कई बार कीर्तन भी कर चुका था। मुकुंद ने हर एक को याद दिलाया कि जब स्वामी जी बाहर आ रहे होंगे और यदि उस समय सब हरे कृष्ण गाते रहेंगे तो वे बहुत प्रसन्न होंगे और हरे कृष्ण मंत्र से भी से सभी अवगत थे। न्यूयॉर्क के पार्क में स्वामी जी के हरे कृष्ण गान के बारे में सभी सुने थे। यह स्थानीय भूमिगत पत्र एरनकिन स्वामी जी की और उनके मंत्र में लेख पढ़ चुके थे। उसी दिन सवेरे मुकुंद द्वारा वितरित इशार जो पढ़ कर गोल्डन गेट पार्क में इकट्ठे हुए थे और एक घंटे से अधिक हरे कृष्ण का कीर्तन करने के बाद मोटर गाड़ियों में बैठकर हवाई अड्डे गए थे। अब उनमें से बहुत से मुकुंद के इशार का अनुसरण करते हुए हाथ में फूल और सुगंधित पदार्थ लिए वहीं खड़े थे। जब उतरने वाली यात्रा हवाई अड्डे के समांतर द्वार के प्रवेश करके दलान के ऊपर चढ़ने लगे तो फूल मालाएं लिए हुए और कीर्तन करने वाले स्वागतकर्ताओं को देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए, किंतु कीर्तन करने वाले स्वागतकर्ताओं की दृष्टि थकान से लथपथ सामान्य यात्रियों पर नहीं थी। वे तो उस विमान से आने वाले एक विशेष व्यक्ति की खोज में थे। अचानक उन्होंने देखा कि स्वामी जी उनकी ओर बढ़ रहे हैं। चमकदार केसरिया वस्त्र पहने हुए थे। गहनवी रंग के स्वामी जी प्रभुपाद ने समांतर द्वार के प्रवेश करने वाले ही हरे कृष्ण कीर्तन सुन लिया था और वे मुस्कुराने लगे थे। वे प्रसन्न और विस्मित थे और चेहरों पर दृष्टिपात करते हुए वे केवल कुछ को ही पहचान सके। इतने पर भी उनके स्वागत के लिए 50 लोग एकत्रित थे और बिना उनके कुछ कहे हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे। मुकुंद, हमने स्वामी जी पर दृष्टि डाली और हम नतमस्तक हो गए। स्वयं मैं और मेरी पत्नी और मेरे द्वारा लाए गए मित्र साम मार्जोरी आदि और तब यहाँ के सभी लोग ने युवा पुरुष स्त्रिया जो वहाँ एकत्रित थे हमारा अनुसरण किया और सभी ने स्वामी जी को सिर झुकाया और सभी को विश्वास था कि उस समय वह करना ठीक और उचित था। हिप्पियों का झुंड उस संकरे मार्ग की दोनों ओर पंक्तिबद्ध खड़ा हो गया था और जिससे स्वामी जी को निकलना था। जब वे उस मार्ग पर अपने नए प्रशंसकों के बीच से आगे बढ़ रहे थे तो उसी समय दर्जनों हाथ उन्हें फूल और सुगंध अर्पण करने के लिए फैले थे। उपहारों को दोनों हाथ में स्वीकार करते हुए वे मुस्कुरा रहे थे और रणछोड़ यह सब देख रहे थे। एलन गिनबर्ग एक बड़ा गुलदस्ता लेकर आगे बढ़ा और श्री प्रभुपाद ने उसे कृपापूर्वक स्वीकार किया। तब प्रभुपाद उपहारों और उन लोगों को बांटने लगे जो उन्हें प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े थे। सीमांत द्वार के आगे बढ़ रहे थे और उनकी दोनों ओर युवक और युवती की भीड़ कीर्तन करती हुई चल रही थी। सामान लेने के काउंटर पर स्वामी जी एक क्षण रुके और उनकी दृष्टि चारों ओर खड़े लोगों का सर्वेक्षण कर रहे थे। खुली हथेलियों को ऊपर उठाते हुए उन्होंने लोगों को उच्च स्वर से कीर्तन करने के लिए संकेत किया। एकत्रित समूह फिर से उसे स्वर उच्च स्वर से कीर्तन करने लगे और प्रभुपाद उसके बीच में खड़े थे। वे हल्के हल्के ताली बजा रहे थे और हरे कृष्ण का गान कर रहे थे। फिर उन्होंने मनोहारी ढंग से अपनी बाहों को ऊपर उठाया और उसी उस ओर से उस ओर झूमते हुए नाचने लगे। हवाई अड्डे के कार्यकर्ताओं और यात्रियों में से भी किसी को खींच हुई और किसी को मनोरंजन हुआ और किसी को अपार आनंद हुआ। प्रभुपाद का सामान मिलने तक स्वागत दल वहां रुका हुआ। तब लोग उन्हें बाहर सूर्य के प्रकाश में ले आए और 1949 मंडली की एक मैंडलिक फ्रूट वाली काली कार में बैठाया और मुकुंद और गिम्बर्स के साथ श्री प्रभुपाद के पिछले भाग में बैठ गए। जब तक कि कार मोड़ से घूम नहीं गई तब प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत को पश्चिम को देने के लिए आए थे और अभी तक मुस्कुरा रहे थे। उन सभी लोगों को पुष्प का उपहार बांटते जा रहे थे और उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे आए थे। कैथलिक कार हार्वे कोहन की थी और जिसके लगभग एक वर्ष पूर्व प्रभुपाद को बोहरी की ऊपरी मंजिल में ठहरने के लिए दी थी। हार्वे कार चला रहा था लेकिन चूंकि वे सफर ड्राइवर का हेड जो उसके साल्वेशन आर्मी के एक स्टोर से खरीदा लिया था और काला सूट पहना था और दाढ़ी रखे था, इसलिए प्रभुपाद ने उसे पहचाना नहीं। आर्वे कहे कि प्रभुपाद ने पूछा, ये कार आर्वे कहाँ है? तो प्रभुपाद ने कहा ये कार चला रहे हैं, मुकुंद ने कहा। ओह, तुम्हें तो मैं पहचान नहीं पाया। आर्वे मुस्कुराए और सन फ्रांसिस में स्वागत है स्वामी। श्री प्रभुपाद को प्रशंसा थी कि वे अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती और भगवान चैतन्य की ओर से एक अन्य बड़े पाश्चात्य नगर में पहुंचे थे और भगवान चैतन्य ने कहा था कि पश्चिम में जितना ही आगे बढ़ते जाए लोग उतना ही अधिक भौतिकतावादी मिलेंगे। उतने पर भी भगवान चैतन्य का कहना था कि कृष्ण भावनामृत का प्रसार समस्त विश्व में होना चाहिए। प्रभुपाद ने गुरु भाइयों को भगवान चैतन्य के इस कथन पर प्राय आश्चर्य होता था कि कृष्ण के नाम का गान हर कस्बे में और गांव में होगा और उन्होंने कहा कि कदाचित उनके कथन को एक प्रतीक के रूप में ग्रहण करना होगा, अन्यथा उसका क्या अर्थ हुआ कि कृष्ण हर कक्ष में पर, किंतु श्री प्रभुपाद को भगवान चैतन्य की वाणी में और अपने गुरु महाराज के उपदेश में गहरा विश्वास था। वे सुदूर पश्चिम में सन फ्रांसिस्को नगर में पहुंचे थे और लोगों ने पहले ही कीर्तन शुरू कर दिया था और उन्होंने कीर्तन के साथ उनका स्वागत किया था और विश्व के अन्य नगर भी तो बहुत कुछ जैसे थे। मुकुंद और उनके मित्रों ने जो मंदिर प्राय प्राप्त किया था वह एट एसबरी डिस्वर में फैक्ट्री स्टॉक पर था। नॉर्थ शहर में सभी सेकंड एवेन्यू में मंदिर की तरह वह मंदिर भी एक छोटे स्टोर में अगला हिस्से में था। उसके एक प्रदर्शन खिड़की थी और जिसके सामने सड़क थी और खिड़की के ऊपर संकेत अंकित था कि श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर। मुकुंद और उनके मित्रों के पास की इमारत की तीसरी मंजिल पर स्वामी जी के लिए 3 कमरों का एक अपार्टमेंट किराए पर ले रखा था। वह एक छोटा सा बिना साज सज्जा वाला पुराना अपार्टमेंट था और उसके सामने सड़क थी। भक्तों और उत्सुक दर्शनियों के साथ से भरी गाड़ियों में अनुगमित श्री प्रभुपाद 518 फेवरेट स्टर में पहुंचे और स्टोर फ्रंट के मंदिर में प्रविष्ट हुए और जिसकी दीवारें कुछ मद्रासी कपड़ों से सजाई हुई थी और एक गद्दी पर बैठे बैठकर उन्होंने कीर्तन का नेतृत्व किया और तब हर एक को कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हुए प्रवचन दिया और प्रवचन के बाद वे स्टोर पंथ के निचले और निकट के दरवाजे से 200 तक सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने अपार्टमेंट में पहुंच गए। जब वे अपने कमरा नंबर 32 में पहुंचे तो उनके पीछे न केवल उनके अनुयायी और पंचशेख वरन और सन फ्रांसिस्को प्रमुख समाचार पत्र दि क्रॉनिकल और दि एक्वाजीर और संवाददाता भी थे। उनके अनुयायी उनका भोजन बनाने में लगे और जगनोड़ का सूटकेस खोल कर सामान रखने लगे। स्वामी जी संवाददाताओं से वार्ता करने लगे और फर्श पर बैठे अपने पैड पर नोट ले रहे थे। संवाददाता, अभी नीचे आपने कहा कि आप हर एक को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, क्या इसमें हेड एसबरी के जिप्सी और बीटनिक भी शामिल है? श्रील प्रभुपाद, हाँ, हर एक जिसमें आप और अन्य हर कोई भी शामिल है, चाहे वह पुरुष या स्त्री या उस कोटि का हो या जिसे घोर निषेधाज्ञा एलएसडी का सेवन करता कहा जाता हो या वह हिप्पी हो या कुछ और हो। लेकिन एक बार जब प्रशिक्षण के लिए स्वीकार कर लिया जाता है तो वह पहले से बदले में कर चुका था वो कुछ हो जाता है। संवाददाता, आपने आपके आंदोलन का सदस्य बनने के लिए क्या करना पड़ता है? श्री प्रभुपाद, हमारे यह चार पूर्व परीक्षाएं हैं जो वे अपने शिक्षार्थियों के साथ में सहेलिया या मित्र रूप में लड़कियां नहीं रखते हैं रखने देते हैं। मेरे यह सभी प्रकार के मादक द्रव्य वर्जित है और जिसमें काफी चाय और सिगरेट सम्मिलित है, मैं मांसाहार का निषेध करता हूँ और मैं अपने शिक्षार्थियों को जो चलने से मना करता हूँ। संवाददाता, क्या निषेध मादक द्रव्यों में एलएसडी, सरस, गांजा और अन्य मादक द्रव्य भी सम्मिलित है? प्रभुपाद, मैं एलएसडी को एक मादक द्रव्य मानता हूँ। मैं अपने शिक्षार्थियों को इसके या किसी अन्य मादक द्रव्यों से सेवन की अनुमति नहीं देता। मैं अपने शिष्यों को प्रातः काल उठने की यथाशीघ्र स्नान करने की और दिन में 3 बार प्रार्थना सभाओं में सम्मिलित होने का प्रशिक्षण देता हूँ। हमारा संप्रदाय संयम का संप्रदाय है, यह भगवत विज्ञान का संप्रदाय है। यद्यपि प्रभुपाद ने देखा कि संवाददाता उनके जीवन दर्शन के बारे में प्रायः नहीं लिखते थे तो भी कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने का अवसर वे नहीं चूकते थे। संवाददाता उनके दर्शन की गहराइयों में न भी बैठे तो भी उनके अनुयायी तो ऐसा करते ही थे। आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी भूल यही है कि प्रभुपाद ने कहना जारी रखा कि दूसरी की संपत्ति को इस प्रकार हथियों में की कोशिश की जाती है, हड़पने की कोशिश की जाती है और मानो यह अपनी ही हो। उससे अस्वाभाविक अशांति पैदा होती है। विश्व की हर वस्तु का एकमात्र स्वामी भगवान है। जब लोगों को बोध हो जाएगा कि भगवान परम स्वामी है, वही हर जीवधारी के सबसे अच्छे मित्र और सभी आहुतियों और बलिदानों का अंतिम लक्ष्य है, तो सर्वत्र शांति हो जाएगी। संवाददाताओं ने उनकी पूर्व इतिहास जानना चाहा और उन्होंने संक्षेप में बताया कि वे भारत से यहाँ पहुँचे हैं और न्यूयॉर्क में अपना कार्य प्रारंभ कर चुके थे। संवाददाताओं ने जाने के बाद प्रभुपाद कमरे में उपस्थित नव युवकों के बात करते हुए मुकुंद ने जिसके सिर और दादी के बाल बढ़ा लिए थे, लेकिन जो गले में बड़े लाल मनकों की माला वह लाल मनकों वाली माला पहने हुए था और जिसके जिसे दीक्षा के समय स्वामी जी ने उसे दिया था, अपने कुछ मित्रों का परिचय कराया और बताया कि वे सब एक साथ रह रहे हैं और स्वामी जी की सहायता करना चाहते हैं। ये कृष्ण भावनामृत को सैन फ्रांसिस के युवकों के सामने प्रस्तुत करें। मुकुंद की पत्नी जानकी ने स्वामी जी से उनकी हवाई यात्रा के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि यात्रा सुखद थी, सिवाय उसके कि कानों में उन्होंने कुछ दबाव अनुभव किया। इमारतें दियाचली की डिब्बियाँ मालूम होती थी और उन्होंने कहा और अपने अंगूठों और उंगलियों से दिलासली की डिब्बिया का आकार बताया। वे दीवार के सहारे बैठे और उन सभी मालाओं को उन्होंने गले में से निकाल दिया और जो दिन उन्हें पहनाई गई थी, अंत में उन्होंने गले से केवल एक हार लटकता रहा जो साधारण सस्ते मनकों का बना था और जिसमें एक छोटी घंटी पिराई थी। प्रभुपाद ने उसे हाथ में लिया और उसकी कारीगरी देखी और वह उस पर हाथ फेरने लगे और वह एक विशेष हार था। उन्होंने सिर उठाते हुए कहा, क्योंकि उसका निर्माण भक्ति के साथ किया गया था, वे हार को ध्यानपूर्वक देखते रहे और मानो उसको प्राप्त करना उनके लिए उस दिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। जब उनका दोपहर का भोजन आया तो उन्होंने उसमें से थोड़ा थोड़ा हर एक को दिया और तब रणछोड़ ने तत्परता पूर्वक यद्यपि कुछ बेढंगेपन के साथ लोगों से वहाँ से चले जाने की स्वामी जी को भोजन तथा आराम करने देने का कहा। आवास के बाहर और नीचे स्टॉर्फनन के दी गई बात केवल स्वामी जी के बारे में चल रही थी और किसी को भी उनसे निराशा नहीं हुई थी। मुकुंद उनके बारे में जो कुछ कहते थे वही सब सच था। सब स्वामी जी की यह बात बहुत अच्छी लगी कि फिर हर वस्तु को कृष्णमय देखना चाहे। स्वामी जी के सैन फ्रांसिस्को पहुंचने का समाचार उस रात 11 बजे के टेलीविजन समाचारों में प्रसारित किया और दूसरे दिन वह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। ये एग्जाम निविर में उसे दूसरे पृष्ठ पर छपा हिपियो को स्वामी जी का आमंत्रण, साथ में मंदिर का चित्र छपा और अनुयायियों से भरा था। स्वामी जी के कुछ चित्र छपे जिनमें वह बहुत गंभीर दिखाई दे रहे थे और प्रभुपाद ने मुकुंद से समाचार उसी आवाज में पढ़ाया। लंबे और दुबले पतले धर्मगुरु मुकुंद ने पढ़ा, जो घुटनों तक लंबा और ढीला कुर्ता पहने थे और एक विस्तृत सतह पर पांचली मारकर बैठे थे। स्वामी जी बीच में बोल उठे, वो लेकिन शब्द क्या है? कुंद ने बताया कि उस शब्द का मतलब लंबा और दुबला पतला है। मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मुकुंद बोले, हो सकता है कि क्योंकि आप तीन कर सीधे बैठे हो इसलिए उन्होंने समझा कि आप बहुत लंबे हैं। समाचार में वर्णन था कि हवाई अड्डे पर स्वागतकर्ताओं में बहुत से लंबे बाल वाले दाढ़ी रखे हुए और तिलक चंदन लगाए हुए लोग थे। सैन फ्रांसिस के सबसे बड़ा पत्र जी रानील के भी एक लेख प्रकाशित किया। हिपियो के देश में स्वामी जी धर्म गुरु द्वारा एसएफ मंदिर का उद्घाटन। लेख का प्रारंभ इस प्रकार था, होता था। भारत में एक धर्मिष्ठ पुरुष के जिसे उसके मित्र और बीच कवि एलन ग्रीनबर्ग उनके उसके अपने धर्म के रूढ़िवादी नेताओं में से एक मानते थे। सैन फ्रांसिस्को के हिप्पियों में गढ़ में एक सुसमाचार उपक्रम का सूत्रपात किया। श्री प्रभुपाद को रूढ़िवादी कहे जाने पर आपत्ति हुई। वह रुष्ट हुए और कणमंजरी से यह कहा, यौनाचार और मद्य सेवन में मामले में मुकुंद ने सुझाव दिया, सचमुच हम उन मामलों में रूढ़िवादी हैं। प्रभुपाद ने कहा, उसका तात्पर्य केवल यही है कि हम शास्त्रों का अनुगमन कर रहे हैं, हम भगवद गीता से अलग नहीं हट सकते, लेकिन हम रूढ़िवादी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु इतने दृढ़ थे कि वह किसी स्त्री पर दृष्टिपात भी नहीं कर सकते थे, लेकिन हम अपने आंदोलन में सभी को स्वीकार कर रहे हैं, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, और चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो, उसका पद वैसा भी हो, हर एक आमंत्रित है कि वह आए और हरे कृष्ण का कीर्तन करे। और यह महाप्रभु चैतन्य का वदनान्य है, पर उनकी उदारता है नहीं कि हम रूढ़िवादी नहीं है। श्री प्रभुपाद बिस्तर से उठे और उन्होंने बत्ती जला दी और रात का एक बजा था। यद्यपि आधा अलार्म नहीं बजा था और उन्हें जगाने का कोई नहीं आया था, तो भी वे अपने आप उठ गए थे और कमरा ठंडा और शांत था और अपनी चादर कंधों पर लपटे हुए पांडुलिपिया से भरे बक्स को कामचलाव डेस्क बना कर उसके सामने बैठ गए और पूर्णतः ध्यानस्थ होकर माला फेरते हुए हरे कृष्ण मंत्र का जप करने लगे। एक घंटे तक जप करने के बाद श्री प्रभुपाद लिखने में लग गए और यद्यपि दो वर्ष बीत गए थे जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का तीसरा और अंतिम खंड प्रकाशित किया था, वे हर दिन कार्य करते रहते थे और कभी दूसरे स्कंद के अनुवाद और व्याख्या पर, किंतु अधिकतर भगवद गीता पर। 1900 से 1900 के चौथे दशक उन्होंने पूरी भगवद गीता का अनुवाद और टीका तैयार की थी, लेकिन उसकी एक भी प्रति थी और वह रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। तब 1963 में अमेरिका में कुछ महीने बिताने के बाद उन्होंने फिर प्रारंभ किया भगवद गीता की प्रस्तावना के साथ, जो उन्हें न्यूयॉर्क से मोतियर वी स्टेज में अपने कमरे में रहते हुए लिखी। अब वह भगवद गीता पूरी हो गई थी और पांडुलिपिया के हजारों पृष्ठ से उनका बक्सा भरा था। यदि उन्हें न्यूयॉर्क के शिष्य हयग्रीव, जो पहले अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, उसका संपादन कर सकते और कुछ अन्य शिष्य उसे प्रकाशित कर सकते, तो वह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती। लेकिन अमेरिका में पुस्तक प्रकाशित करना एक कठिन काम था, भारत से अधिक कठिन काम। यदि भी भारत में वे अकेले थे, तो भी 3 वर्ष में वे 3 खंड प्रकाशित करने में सफल हुए थे। वहाँ अमेरिका में उनको बहुत से अनुयायी थे, लेकिन बहुत से अनुयायी का अर्थ था अधिक जिम्मेदारियाँ, और अभी तक अनुयायियों में भी किसी की गंभीर रजाय टाइप संपादन और अमेरिका को व्यवसाय से संपर्क करने की ओर नहीं मालूम हो रही थी। तो भी भगवद गीता के प्रकाशन की आशा बहुत धुंधली होने पर भी श्री प्रभुपाद ने एक दूसरे ग्रंथ चैतन्य चरितामृत का अनुवाद प्रारंभ कर दिया था, जो ભગવાન ચેતન્ય કે જીવન ઓર ઉદ્દેશ્ય પર પ્રમુખ વૈષ્ણવ ધર્મ ગ્રંથ થા પરને કે પરને કા શિષ્યમાં લગાતે હુએ પ્રભુપાદ ને અપની પુસ્તક ખોલી ઓર ટેપ રેકોર્ડ કો ચાલુ કર દિયા ઓર બંગલા ઓર સંસ્કૃત પુસ્તકો સે ઉન્હોને મૂળ પાઠ કા અધ્યયન કિયા ઓર ટેપ રેકોર્ડ પર માઇક્રોફોન કો ઉઠાયા ઓર રેકોર્ડ કરને કા બટન દબાયા ઓર છોટી લાલ બત્તી જલી ઓર ઉન્હોને બોલના શરૂ કિયા જબ ભગવાન ચેતન્ય હરે કૃષ્ણ ગાતે ઓર નાચતે હુએ આગે બઢ રહે થે તબ ઉનકે પીછે સહસ્ત્ર લોક ચલ રહે થે પ્રભુપાદ એક બાર મે કેવલ એક વાક્ય સે બોલતે થે ટેપ રેકોર્ડ બંધ કર દેતે થે ઓર રુકતે થે ઓર ફિર બોલતે બોલને લગતે થે ઉનકે અનુગામીઓ મે જો કુછ હર્ષ રહે થે ઓર કુછ નાચ રહે થે ઓર કુછ ગા રહે થે કુછ ધરતી પર લેટ રહે થે ઓર પ્રતિ શ્રદ્ધા ઓર ઉસકે પ્રતિ શ્રદ્ધા પ્રકટ કર રહે થે ઉસ પ્રકાર બોલતે ઓર રુકને રુકતે હુએ ટેપ રેકોર્ડ ચલાતે ઓર કભી બંધ કરતે ઓર કભી પ્રભુપાદ સીધે ટર્ન કર બેઠ રહે ઓર શબ્દો કી અભિવ્યક્તિ મેં તેજી લાને કે લીએ કભી ઝૂમને લગતે ઓર કભી શિર હિલાતે શિર હિલાને લગતે યા કભી વે અપને પુસ્તકો પર નીચે ઝુક કર સસમે કે દ્વારા ધ્યાનપૂર્વક ઉનકા અધ્યયન કરને લગતે શ્રી પ્રભુપાદ ને જો ભગવદ્ ગીતા ભારત મેં જો પ્રકાશિત કરના સહા થા જો ઉનકે અનુવાદ કિયા થા વો ભગવદ્ ગીતા ચોરી હો ગઈ થી યા કુછ ભી હો ગયા થા ફિર બાદ મેં જો અમેરિકા મેં આકર ઉને લિખા થા દો સાલ કે બાદ દો સાલ મેં ભગવદ્ ગીતા કા અનુવાદ કિયા થા ઓર ઉનકો પ્રેસ કરકે જો બુક કે રૂપ મેં પ્રકાશિત કરના થા લેકિન વો કુછ અસુવિધા હોને કે કારણ વો કર નહીં પાયા થા ઓર વો ભગવદ્ ગીતા કા અનુવાદ તૈયાર હોને કે બાદ ભી વો નહીં કર પા રહે થે ઓર સાથ સાથ મેં પ્રભુપાદ ને ચૈતન્ય ચરિતામૃત કા અનુવાદ લિખના ચાલુ કર દિયા ગ્રંથ મેં હમને પઢા તો ઇસ મહિને મેં ભગવદ્ ગીતા જો પ્રભુપાદ કી ઈચ્છા હૈ વિશેષ કરકે પૂરા વિશ્વ મેં ભગવદ્ ગીતા કા વિતરણ હો 23 ડિસેમ્બર મહિને મેં જો મેરાથન ચલ રહા હૈ યહી ભગવદ્ ગીતા કા પ્રભુપાદ કી બહોત તીવ્ર ઈચ્છા થી કે પૂરે વિશ્વ ભગવદ્ ગીતા ઓર શ્રીમદ ભાગવતમ એક અનુવાદ મેં પઢ રહા થા પ્રભુપાદ ચાહતે થે કે હરેક વ્યક્તિ કે ઘર મેં શ્રીમદ ભાગવત કા સેટ હોના ચાહીએ ઇતના પ્રચાર હોના ચાહીએ બુક કા ઓર સાથ સાથ મેં ભગવદ્ ગીતા કા તો વિશેષ કરકે જો ભગવદ્ ગીતા કા ડિસેમ્બર મહિને મેં સભી ભક્ત લોગ પ્રયાસ કર રહે વિતરણ કરને કે લીએ તે સુંદર અવસર દિયા હૈ પ્રભુપાદ કા જો ઈચ્છા પૂર્ણ કરને કે લીએ હમે ગીતા મેરાથન મેં સભી ભક્તો કો ખાસ કરકે હમે ભી લગના ચાહીએ જો ઇસ ગીતા મેરાથન કા 10 દિન તો ચલા ગયા હૈ લેકિન અભી હમ લગ્યા નહીં વિતરણ મેં તો પ્રભુપાદ કી વિશેષ કરકે ખાસ ઈચ્છા થી કે ઉનકા ગ્રંથ કા વિતરણ હો પ્રકાશન હો તો જો ઓર એક છોટી સી બુક છે જો પ્રભુપાદ કા કોમેન્ટ દિયા હૈ ઇસમે ઇસમે હર એક પત્ર લિખા હૈ ઉસમે લિખા હૈ મેરા બુક કા વિતરણ કરો યા પ્રચાર કરો તો ઇસ પ્રભુપાદ કી ભાવના કો દેખતે હુએ સભી ભક્ત અભી ઇસ ડિસેમ્બર મે પ્રચાર કર રહે હૈ ઓર ગીતા કા વિતરણ કર રહે હૈ તો ઇસ અવસર કા લાભ લેતે હુએ હમે ભી ગીતા કા વિતરણ કરના ચાહીએ યહી પ્રભુપાદ કી ઈચ્છા થી ઓર પ્રભુપાદ ને યહી કહા હૈ કે જબ તક મેરા ગ્રંથ કા વિતરણ હોગા તબ તક મેં જીવિત રહૂંગા તો એ પ્રભુપાદ કી સબસે બડી ઈચ્છા થી ઓર ઇસ ઈચ્છા કો પૂર્ણ કરને કે લીએ હમે ભી ઉનકા ગ્રંથ કા વિતરણ કરના ચાહીએ તો ઇસી મેં પ્રભુપાદ પ્રસન્ન હોંગે ઓર જબ પ્રભુપાદ ઓર ગુરુ ઓર આચાર્ય જબ પ્રસન્ન હોંગે તો અમારી ભક્તિ મેં ઓટોમેટિક પ્રગતિ હો સકતી હૈ તો ઇસ કામના કે સાથ હમે પ્રચાર કરના ચાહીએ ઓર भगवत गीता का वितरण करना चाहिए। श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा। सभी भक्तों को एक नम्र निवेदन है कि आज शाम को 7:30 बजे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का आगमन होगा इस राधा गिरधारी मंदिर में, तो सभी भक्तों को आमंत्रित करते हैं और सभी भक्तों को विशेष करके जो अपने साथ रहते हैं उनको भी साथ में लेके आइए और 7:30 बजे महाराज प्रवचन होगा, तो सभी भक्तों इनको इस अवसर का लाभ लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।